ओम नमस्ते जी। 135वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, लेखक श्री आदित्य मुनि जी वानप्रस्थ। हम 8वें अध्याय दिवाकर की विस्तृत गगन कार्यक्षेत्र में तपन 1873 ईस्वी कोलकाता में महर्षि दयानंद जी का आगमन हो चुका है। वहां पर वहां की घटनाएं हम आपको सुना रहे हैं। व्याख्यान देने और वेद भाष्य करने का निश्चय। एक दिन स्वामी जी ने बलदेव प्रसाद से कहा कि बलदेव, रईसों के पुत्र तो फारसी और अंग्रेजी ने ले लिए, दरिद्रों के लड़के संस्कृत के लिए रह गए, इन वानरों से कुछ न होगा। उन्होंने यह संकल्प लिया कि अब हम व्याख्यान दिया करेंगे और वेद भाष्य करेंगे। न्योता क्यों खाया। एक दिन गजानन विद्यार्थी बिना स्वामी जी की आज्ञा से किसी मारवाड़ी के यहाँ निमंत्रित होकर भोजन कराया। स्वामी जी उससे अप्रसन्न हुए और आगे को ऐसा करने से निषेध किया, परंतु इसके पश्चात भी एक बार फिर उसने ऐसा ही किया, तब स्वामी जी ने उसे निकाल दिया बिना परिचय के। परिचय कहते हैं कि जब बाबू केशव चंद्र सेन सर्वप्रथम स्वामी जी से मिले और बातचीत की, तो उन्होंने स्वामी जी को अपना परिचय नहीं दिया था। बातचीत की समाप्ति पर केशव बाबू बोले, आप बाबू केशव चंद्र से मिले हैं। स्वामी जी, हाँ मिला हूं। केशव बाबू, जब वे कलकत्ता में थे ही नहीं तो कैसे मिले। तो स्वामी जी ने कहा, आप ही बाबू केशव चंद्र सेन हैं। केशव बाबू, आपने मुझे कैसे पहचाना। इस पर स्वामी जी ने कहा, जो बातचीत आपसे हुई है वह किसी अन्य की हो ही नहीं सकती। केशव बाबू स्वामी जी की इस पुरुष परीक्षा की अपूर्व योग्यता से बड़े प्रसन्न और चकित भी हुए तथा वे स्वामी जी के प्रति स्नेह सूत्र में आबद्ध हो गए। वैदिक धर्म ही सच्चा धर्म है। केशव बाबू ने एक दिन स्वामी जी से प्रश्न किया कि इस समय संसार में तीन सबसे बड़े धर्म हैं, कुरान का, बाइबल का और वेद का, हम किसे सच्चा माने। स्वामी जी ने वेद के सच्चा होने की उन्हें 6 युक्तियां दी थीं, जिनमें से एक यह भी थी कि कुरान और बाइबल में हर प्रकार के झगड़े बखेड़े और कथा कहानियां हैं, परंतु वेद में उपदेश के अतिरिक्त और कोई झगड़ा आदि नहीं है। एक दूसरे की अनभिज्ञता पर शोक। एक दिन केशव बाबू ने स्वामी जी से कहा कि मुझे शोक है कि आप जैसे वेद वेत्ता अंग्रेजी नहीं जानते, नहीं तो आप इंग्लैंड जाने के लिए मेरे प्रीतिप्रद साथी होते। स्वामी जी ने तत्काल उन्हें इसका उत्तर दिया कि मैं भी ब्राह्म समाज के नेता के संस्कृत न जानने पर शोक प्रकट करता हूँ कि वह एक सत्य धर्म को उस भाषा में भारतीयों को सिखाने का दम भरता है जिसे वे प्रायः समझ भी नहीं सकते। भाषा में बोलने का परामर्श। केशव बाबू ने ही स्वामी जी को संस्कृत के बदले भाषा में व्याख्यान देने का परामर्श दिया था और कहा था कि संस्कृत में आप कहते कुछ हैं और दूसरे लोग श्रोताओं को उसका आशय अन्यथा समझा देते हैं। इसी परामर्श को स्वामी जी ने स्वीकार भी कर लिया था। इस संबंध में पंडित हेमचंद्र चक्रवर्ती की दैनंदिनी 23 फरवरी 1873 की पूर्वोक्त घटना पठितव्य है। वस्त्र धारण करने का भी परामर्श। स्वामी जी को वस्त्र धारण करने का परामर्श बाबू केशव चंद्र सेन और पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दिया था। इसे भी स्वामी जी ने स्वीकार कर लिया था क्योंकि पिछले हरिद्वार कुंभ संवत 1924 विक्रमी के मेले के बाद से वे केवल एक लंगोट ही धारण करके सर्वत्र विचरण कर रहे थे, जिसमें कभी कभी अभद्र परिस्थितियां पैदा हो जाती थी, जैसा कि जमालपुर के रेलवे स्टेशन पर एक अंग्रेज दंपति के समक्ष घटी थी। असत्य के त्याग पर उद्यत। स्वामी जी में जहां अनेकों गुण थे, उनका एक गुण यह भी था कि वे सत्य और युक्ति युक्त परामर्श को तत्काल स्वीकार कर लेते थे, चाहे परामर्श देने वाला विद्या वय में उनसे कितना ही छोटा क्यों न हो। वे हठी और दुराग्रही नहीं थे। वे सत्य के ग्रहण करने और असत्य के त्याग पर सदा उद्यत रहते थे। अपने इसी गुण को उन्होंने कुछ वर्ष बाद अपने द्वारा स्थापित आर्य समाज के चतुर्थ नियम में भी प्रतिष्ठापित किया है। ब्राह्म समाज में मतभेद। बंगाल में उन दिनों एक और धार्मिक आंदोलन हो रहा था। राजा राम मोहन राय ने जो सुधारक संस्था स्थापित की, वह ब्राह्म समाज के नाम से प्रसिद्ध है। ब्राह्म समाज और स्वामी जी के सिद्धांत कई अंशों में मिलते थे। मुख्य भेद यही था कि ब्राह्म समाजी वेदों को ईश्वरकृत और आवागमन के सिद्धांत को नहीं मानते थे, परंतु फिर भी उन्होंने आर्य संस्कृति से पूरा संबंध विच्छेद नहीं किया था। उन दिनों ब्राह्म समाज में एक नए सुधारक पैदा हो गए थे। इनका नाम बाबू केशव चंद्र सेन था। ये अंग्रेजी के बड़े ओजस्वी और प्रगल्भ वक्ता थे। ये दावा करते थे कि वे ईश्वर के प्रेरित और प्रेषित व्यक्ति हैं। वास्तव में वह अपना यही पद समझते थे और लोगों को समझाते भी थे, जो पद ईसा का था। उनके विचार ईसाई धर्म के सिद्धांतों की ओर अधिक झुके हुए थे। ब्राह्म समाज के नेता महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर थे। उनसे बाबू केशव चंद्र सेन का मतभेद था। बाबू केशव चंद्र सेन ने उनसे अलग होकर नवविधान समाज स्थापित किया, जिसके आचार्य और अधिनायक वे स्वयं बने थे। केशव बाबू का निमंत्रण। एक दिन केशव बाबू ने स्वामी जी को अपने कोलू लोटा वाले गृह पर निमंत्रित किया। केशव बाबू और स्वामी जी का इस विषय पर कि जन्म कर्माधीन है व नहीं विचार हुआ था। केशव बाबू ने किसी प्रसंग के उठने पर एक श्लोक पढ़ा था, जिसका एक चरण था, सुविशालमिदं विश्वं पवित्रं ब्रह्मा मंदिरम। स्वामी जी ने इसे सुनकर कहा था कि विश्व को ब्रह्म मंदिर कहने से ब्रह्म को छोटा करना पड़ता है। वास्तव में ब्रह्म ही विश्व का मंदिर है और ऐसा कहना ही उचित है। स्वामी जी संस्कृत बोलते थे, परंतु वह इतनी सरल थी कि केशव बाबू को उसके समझने में कुछ भी कठिनाई नहीं हुई। स्वमंतव्य प्रकाश। केशव बाबू ने उसी दिन एक सभा भी बुलाई, जिसमें स्वामी जी ने सरल संस्कृत में अपने मंतव्यों को व्यक्त किया था। मूर्ति पूजा, अद्वैतवाद, वर्तमान प्रणाली के जाति भेद के विरुद्ध अनेकों बातें कही। विधवा विवाह को समुचित बताया। कन्याओं का विवाह 18 वर्ष की आयु में होना चाहिए, यह सम्मति भी प्रकट की। पंडित की भूल। सभा समाप्ति के पश्चात स्वामी जी, केशव बाबू तथा अन्य लोग 3 मंजिले पर चले गए। जब स्वामी जी जीने पर चढ़ रहे थे, तब एक बंगाली पंडित ने उनके भाषण में व्याकरण की भूल दिखाई। स्वामी जी ने तुरंत व्याकरण का एक सूत्र उद्धृत करके यह सिद्ध कर दिया कि उनके कथन में कोई भूल नहीं थी। पंडित हेमचंद्र चक्रवर्ती की दैनंदिनी की अगली प्रविष्टि इस प्रकार है, 22 से 31 मार्च 1873। स्वामी जी एकांत में ग्रंथ रचना में संलग्न रहे। अवकाश के समय उनका उपदेश हुआ। पंडित हेमचंद्र चक्रवर्ती की अपनी दैनंदिन की उक्त प्रविष्टि पर पंडित युधिष्ठिर मीमांसक ने अपने द्वारा संपादित वेदवाणी मासिक पत्रिका बहालगढ़ के दयानंद विशेषांक नवंबर 1983 में टिप्पणी की है कि ऋषि दयानंद इन दिनों किस ग्रंथ की रचना में संलग्न रहे, यह ज्ञात नहीं हो सका। इन दिनों किसी ग्रंथ के लिखने का वर्णन जीवन चरित्रों में उपलब्ध नहीं होता। स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवनी लेखक पंडित लेखराम आर्यपतिक ने भी अपने ग्रंथ में लिखा है कि सन 1872 में जब वे कलकत्ता में पधारे और संस्कृत भाषा में धर्म प्रचार आरंभ किया, तो यहाँ के कतिपय सम्मानित सज्जनों ने भी उनका जीवन चरित्र संबंधी वृत्तांत जानने का प्रयत्न किया, परंतु असफल रहे। विद्वान सन्यासियों के अतिरिक्त जिन्हें वे कुछ वृत्तांत कभी मित्रता के नाते बता दिया करते थे, साधारण गृहस्थियों के सामने ऐसे वृत्तांत बताना वे निरर्थक समझते रहे। पंडित लेखराम कृत महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र प्रथम भाग अध्याय 1 में यह आलेख मिलता है। आर्य समाज कलकत्ता के पंडित दीनबंधु वेदशास्त्री ने, जिन्होंने ही पंडित हेमचंद्र चक्रवर्ती की उक्त दैनंदिनी दयानंद प्रसंग नाम से सर्वप्रथम 1954 ईस्वी में बांग्ला भाषा में अपनी आर्य समाज के माध्यम से प्रकाशित की थी, उन्होंने आगे दिसंबर 1968 ईस्वी में तब तक अप्राप्त स्वामी दयानंद के उक्त दैनंदिनी में उल्लिखित ग्रंथ की प्राप्ति में 1923 ईस्वी से लेकर तब तक किए गए अपने प्रयासों का विस्तृत विवरण अज्ञात जीवनी की पृष्ठभूमि के रूप में देकर बताया है कि उसके मूल हस्तलेख उन्हें कब और कहां से हस्तगत हुए थे। पठितव्य परिशिष्ट 3। इन्हीं बंगला भाषा में प्राप्त विवरणों का आर्य भाषा में स्वयं ही उन्होंने अनुवाद करके सर्वप्रथम सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली के साप्ताहिक मुखपत्र सार्वदेशिक के 5 जनवरी 1969 ईस्वी से लेकर 8 नवंबर 1970 ईस्वी तक के 66 अंकों में धारावाहिक रूप से महर्षि दयानंद सरस्वती की अज्ञात जीवनी शीर्षक से प्रकाशित कराया था। इस प्रकाशित सामग्री का आद्योपांत अध्ययन करके मैंने, अर्थात लेखक आदित्य मुनि जी ने, उसके अंत में उपसंहार में यह लिखा हुआ पाया कि कलकत्ता आने का मुख्य उद्देश्य। मेरे कलकत्ता आने का प्रधान उद्देश्य है वेद विद्यालय की स्थापना और गौण उद्देश्य है वैदिक धर्म का मौखिक प्रचार करना। संस्कार पंथी बंगाल की तरफ मेरा मानसिक आकर्षण स्वाभाविक ही था। राजा राम मोहन राय का मूर्ति पूजा विरोधी आंदोलन सन 1787, ईसाई धर्म विरोध आंदोलन सन 1820, सतीदाह निषेध आंदोलन सन 1829, जनसाधारण के अंदर आर्य धर्म प्रचार के लिए महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर के तत्वबोधिनी पत्र का संस्थापन और स्त्री शिक्षा के लिए विद्यालय स्थापना आदि का कार्य और महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा ऋग्वेद का बंगला बंगानुवाद प्रकाशन सन 1841 आदि सर्वतोमुखी संस्कार आदि के कारण बंगाल के प्रति मेरा आकर्षण पैदा हो गया था। आप मेरे मुख से आप लोगों ने मेरे जीवन के बारे में सब कुछ सुनने के लिए आग्रह किया था। योग विद्या के बारे में मेरा अनुभव, प्रजा विद्रोह के बारे में मेरा मंतव्य और मेरे पारिवारिक परिचय के बारे में प्रकाश आदि विषय जानने के लिए विशिष्ट व्यक्तियों ने इच्छा प्रकट की थी। मैंने जहां तक संभव हुआ इन विषयों के बारे में सब कुछ कहा। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम।